Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई जराए बुरुएकार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कायम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशन्स का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।
जो लोग आपके लिए comune, una comune poate să apă. Eu am vinculat în altul de el comune, de ză părpus. Una de nam, una de cinze, pe măsă, or, pe faida. So, azi, în particular, am zis, bata pe gaut gărei de lucrurile mele. Că în sare, study mein Yunanthan ka jo ahem kirdaar hame nazar aa raha hai he is a great man usse kya character mein nazar aata hai he is a great man wo ek azim dost hai aur khuda ek particular purpose ke liye use David ke nazdeek aaja rakha baba nikalne ke pehle Samuel uska naam maara aur jab inka first time encounter hota hai तो जॉनाथन तकरीबन 40 ईयर्स का है और डेविड जो है वो तकरीबन 20 साल का है और खुदा ने परफेक्ट टाइमिंग पे इस रिलेशनशिप को या फ्रेंडशिप को बिल्ड अप किया। स्वयं पढ़े पहली आयत
से बातें कर चुका तो युद्धन का दर्द दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि युद्धन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत कर लिया और शाओ ने
अभी बस पहली यार सो पहली बार जो ये उनका पहला एनकाउंटर है पहली दफा वो दूसरे को मिले हैं वो अभी उनका पहला एनकाउंटर है और यहाँ पर युद्धन के बारे में लिखा है यूनतन उनसे अपनी जान के बराबर मोहब्बत कर रहा है अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है द सोल ऑफ जॉनाथन वाज निटेड विद द सोल ऑफ डेविड यानी खुदा ने उन दोनों की रूह को और जान को आपस में मिला दिया और उर्दू में जब हम देखते हैं कि यूनतन उसे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा इसका मतलब यह है कि यूनतन के पॉइंट ऑफ व्यू में डेविड इज इक्वल टू मी दाऊ मेरे बराबर दिस इज द क्वालिटी ऑफ यूनतन आज का जो इंसान है वो दूसरों को आप अपने आप से कमतर समझते हैं हम ये समझते हैं हमारी क्वालिटी ज्यादा है हम बेहतरीन हैं हम दूसरों से अफजल हैं हम दूसरों से आना है इस वजह से हम कोई ना कोई पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं और दूसरे हमसे कमतर हैं हम उनमें कोई वीक पॉइंट ढूंढ लेते हैं लेकिन यहाँ पर यूनतन ने किसी बात का सहारा नहीं दिया ना अपनी क्वालिटी का और ना दाऊद की किसी खामी का बल्कि उसने उसको क्या दिया अपने बराबर मोहब्बत करने लगा उसे क्या समझता है कि इज इक्वल टू मी जैसा मैं हूं वैसा ही अब वो अपने आप को कैसे देख रहा है वो अपने आप को ऐसे देख रहा है आई एम अ मैन ऑफ गॉड मैं एक मर्द खुदा हूं एंड आई एम अ वॉरियर सो डेविड इज अ मैन ऑफ गॉड एंड डेविड इज अ वॉरियर वो ये खूबियां दाऊद ने दी यूनतन को यहां से नहीं था अगर आप पिछले चैप्टर्स में जाएं उसने बड़ी इसराइल के लिए बड़ी बड़ी जंगें की और बड़ा कलेश और कमजोर दिल या बुजदिल नहीं था और बाइबल अथॉरिटीज एक सवाल हमारे सामने रखती हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिलता वो ये है कि यूनतन ने जाबी जूलियत को फाइट क्यों नहीं की इंपोर्टेंट जाने बहुत कलेश अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए तो पीछे भी देखें और अगर आप उसे आगे चलकर भी देखें ना वो मरने से डरता है ना वो जान करने से डरता है He is a brave warrior and is a great man of God. लेकिन यहाँ पर particularly हम ये देख रहे हैं वो उसको अपने बराबर मोहब्बत करते हैं You are man of God and I am man of God. I am a warrior, you are a warrior. बराबर है लेकिन जो तीसरा एरिया जिसमें वो अपने आप को बराबर देखता हूँ ये है कि आई एम द किंग सन मैं बादशाह का बेटा हूँ और साउल का वारिस हूँ और मैंने बनी इसराइल का अगला बादशाह बनना है और जैसे मैं बादशाह हूँ वैसे तू भी बादशाह He saw a king in the eyes of David. He उनका रिलेशनशिप इट वाज एज परफेक्ट एज एनी. किसी कॉम्पिटिशन में नहीं किया, किसी फाइट में नहीं किया कि डेविड मेरी जगह ना ले. एनवियस नहीं हुआ कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए. रादर हम ये देखते हैं उससे हमेशा दाऊद को प्रमोट किया कि उसकी जिंदगी में वो मकसद पूरा हो जिसके लिए वो बुलाए. तो यहां पर पहली आयत में हम ये बात देखते हैं जब दोनों के एनकाउंटर होता है तो जॉनाथन डेविड को अपने बराबर समझता है. तीसरी और चौथी आयत.
और यूनाथन और दाऊद ने वहां सहन किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करता था. तब यूनाथन ने वो कबाब जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दे दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमर बंद कर दे दिया.
सो बाइबल स्कॉलर हमें बताते हैं इस पॉइंट पर जब डेविड वहां पे मौजूद था सो ही वाज वेयरिंग गोट स्किन. उसका जो लिबास था जो कपड़े थे वो चरवाहे के थे. बल्कि सारे जाति जूनियर के एनकाउंटर में और उसने जो ड्रेस पहना हुआ था इट वाज नॉट अ रॉयल ड्रेस. वो बड़े साफ सुथरे कपड़े नहीं थे और किसी ब्रांड के कपड़े नहीं थे. उसने बकरे या बकरी की खाल के कपड़े जो है वो पहने हुए थे जो चरवाहे पहनते थे. सो ही वाज वेयरिंग अ गोट स्किन ड्रेस. और जब साउल उसे अपनी जान के बराबर उससे मोहब्बत करता है तो साउल क्या करता है अपना जो रॉयल ड्रेस है उसको पहना देता है. अपनी कमान और अपनी पोशाक और अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमर बंद जो है पांचों चीजें उसने डेविड को दी. सो ही मेरे में रॉयल थी और उसने उसको वेलकम किया कोर्ट में. यू आर अ शेपर्ड बॉय और तूने गोट स्किन का ड्रेस पहना हुआ है लेकिन तूने खुदा के लोगों के लिए वो काम किया है जो सुल्तान और जो बादशाह जो काम करते हैं कि तूने खुदा के लोगों को पता दिलाई है. सो मैं तुझे ऑनर करता हूं. आई ऑनर यू पब्लिकली. दिस इज द क्वालिटी ऑफ जॉनाथन. बहुत से सवाल आपके मनी इसराइली कहते हो कि साउल खुद क्यों नहीं कहा जाती जूनियर को मारने. ही वाज आल्सो अ वेरी ब्रेव एंड माइटी मैन लेकिन नाफरमानी की वजह से वो खुश दिल बनता जा रहा. और यूनदर से मनी इसराइल वापस था और आप पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में पढ़े मनी इसराइल के लोग यूनदर से वापस थे. और एक जगह पर जब उसके बाप ने एक गलत बोध कर दिया था तो जरूर था कि यूनतन मारा जाता लेकिन बड़ी स्टाइल ने कहा कि हम मुझे इसको मारने नहीं देंगे. वी लव हिम टू मच. ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड अ मैन ऑफ डिग्निटी. दो बातें मैंने शुरू में यूनतन के बारे में कही वो आप याद रखें. हम इस मैसेज में रिपीट भी करेंगे. ही वाज अ मैन ऑफ क्वालिटी एंड ही वाज अ मैन ऑफ डिग्निटी एंड ही वाज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी. और यहाँ पे वो उसको अपने मुकाबले पे या अपने मुकाबले ले आता है और पब्लिक के सामने ये सारा ड्रेस जो है उसको देता है ताकि उसको ऑनर दे. एक और पॉइंट पर साउल ने भी उसको अपना ड्रेस दिया और उसने कहा ये पहन कर चला जा. लेकिन साउल के जो देने का मकसद था वो ये था कि हमें इस कॉप से लड़ाई लड़ाई इस फिनोमेना से जो जाति जूलियत का फिनोमेना है ये बंदा हमारी जाति है. उसके ड्रेस देने का मतलब कुछ और. लेकिन जब यूनतन अपना लिबास जो है वो दाऊद को देता है उसका जो मतलब है कुछ और है. और उसका मतलब ये है कि जैसे मैं रॉयल हूं वैसे ही तू रॉयल है. मैं तुझे अपने बराबर का स्टेटस दे और मैं तुझे सारी बनी इसराइल के सामने इज्जत दे. जबकि साउल के बारे में लिखा है कि जब उन्होंने ये गीत गाए कि साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा वो उससे जेलस हो और वो उससे हसद करने लगा. लेकिन जो जॉनथन का वाइटिंग टू था वो इंटायरली डिफरेंट। सो आज हमने पहली बात इसमें से देखने की वो ये है कि दाऊद और यूनतन के ताल्लुक से इस पैसेज में जो हमें बताया गया दे बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, जबरदस्त दोस्त बन गए। और यूनतन ने पहला स्टेप लिया बिकॉज ही वॉज इन द हाई पोजिशन और डेविड को ये एक्सपीरियंस दिया कि हाउ अ मैन इज, एक जो गॉडली मैन है, एक जो राष्ट्रवाद और खुदा प्लस दोस्त है वो कैसा। और जैसे मैंने पहले कहा खुदा ने यूनतन एक्सपीरियंस दाऊद की जिंदगी में आने दिया जो कि खुदा कुछ लेसन्स दाऊद को सिखाना चाहता है। And one of the lessons was to have a good friend. एक ऐसा दोस्त आपके साथ खड़ा हो जो आपकी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हो, आपकी फिक्र करता हो और आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। ये वो एक्सपीरियंस दाऊद की जिंदगी में लाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दाऊद की जिंदगी में इससे पहले दो तजर्बे नहीं थे, फैमिली का एक्सपीरियंस नहीं था। He was out in the fields. He was out from the family. और उसका उसे फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस नहीं था और खुदा ने ये तजर्बा उसकी जिंदगी में लाने दिया ताकि वो ये सीख सके वी नीड गॉडली फ्रेंड्स इन आवर लाइफ्स। हमें अपनी जिंदगियों में खुदा का मिशन पूरा करने के लिए और हमें राष्ट्रवाद जिंदगियां प्रसर करने के लिए और हमें राष्ट्रवाद फैसले करने के लिए वी मस्ट हैव गॉडली पीपल अराउंड। आप खुदा ने अनाज से भी सिखाता है लेकिन खुदा परस्ती एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसी तर्ज जिंदगी है जो खुदा हमें दूसरों से सिखाता है और खुदा हमारे नजदीक ऐसे खुदा परस्त लोग लाता है ताकि हम उनसे खुदा परस्ती में जिंदगी बसर कर सकें। जॉनथन दाऊद की जिंदगी में आया ताकि डेविड अपना मिशन पूरा कर सके। If you don't have a godly friend in your life, और अगर आपकी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द खुदा प्रस्त लोग नहीं है जिनके साथ आप उठते बैठते बातचीत करते दुआ करते मशवरा लेते हैं, you lack something in your life. और जो मिशन आपको दिया गया है somehow वो अधूरा रह जाएगा या उसमें कमी रह जाएगा। और अगर आज हम माशरे में निगाह करें we live in a friendless society. और अगर इन रियलिटी हकीकत में अगर आपकी जिंदगी में एक या दो खुदा प्रस्त दोस्त हैं या लोग हैं आप खुशकिस्मत हैं। अदरवाइज we all are living our own lives. हम सब अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम किसी के बारे में कंसर्न नहीं है और वी आर लिविंग आवर ओन सेल्फिश लाइफ्स। If David needed a godly friend to complete his mission, today we also need godly people in our lives to fulfill our mission. ताकि हम अपनी जिंदगी और भलाई लाने और चर्च होने का मिशन पूरा कर सकें। अगर आपकी जिंदगी में वाकई यू हैव वन रियल फ्रेंड इन योर लाइफ यू आर लकी पर्सन एंड दैट फ्रेंड इज अ चैप्टर, वो आपके लिए बड़ी कीमती चीज है। और दुनिया का ये डिलेमा है कि वी लिव इन अ फ्रेंडलेस सोसाइटी। आप फेसबुक पे आपके बहुत से दोस्त हैं ऑल यूजलेस, वो आपके आपका बर्थडे होगा ये की तस्वीर भेज देंगे, सब सब पे एवरीथिंग इन रियलिटी यू आर गेटिंग नथिंग। आपके बहुत सी बातों पे कमेंट्स पे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और देयर सम जेन्युइन पीपल आल्सो, लेकिन जब 5000 बंदे आपकी लिस्ट में हैं तो यू कैन नो 99% आर जस्ट पे योर नो फ्रेंड्स। You said you were just killing your time. और सोसाइटी क्यों because they don't have godly friends. And the same is problem with the church. Church is bad name, a lot of people. We must have godly people around us, and our friendships must be godly. We must have friendships, and we must have godly friendships. This is the rule of the year. We will go ahead and go ahead. In Psalm 17:17, when we read the Bible, who is a godly friend? A friend loves at all times, a real friend. If you don't have it, क्यों इस बात पे गौर कर रहे हैं कि दाऊद की जिंदगी बचाने में यूनतन ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, और अगर दाऊद की जिंदगी उसने बचाई है तो इसका मतलब है कि उसने दाऊद की मदद की है कि वो अपने मिशन को, प्लान को, कॉलिंग को, विजन को पूरा करे। और अगर उसने दाऊद की जिंदगी बचाई है या बचाने में मदद की है तो साउल ने, सॉरी जॉनाथन ने, खुदा के उस मिशन को अकॉम्प्लिश करने में कुर्बानी दी है उसके लिए, ताकि खुदा की जो मर्जी है वो दाऊद की जिंदगी में और बनी इसराइल की जिंदगी में। और यूनतन की फ्रेंडशिप की वजह से दाऊद साउल के हाथों मरने से बचा। और यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट हम देखते हैं जॉनाथन की जिंदगी में, वो ये है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आया जब उसे दो लोगों के दरमियान फैसला करना, एक शख्स, एक हस्ती उसका बाप था जिसकी उसने कभी नाम कुर्बानी नहीं की थी और उसकी बात को फॉलो करता था, और जो सेकंड शख्स था जिसके दरमियान उसने फैसला करना था वो दाऊद था, जिसे वो भाई से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। मैं अपने बाप का साथ दूंगा या मैं दाऊद का साथ दूंगा, मैं साउल का साथ दूंगा या मैं दाऊद का साथ दूंगा। यूनतन ने एक मुश्किल फैसला, अगर वो बाप के खिलाफ हो जाता है इट्स अगेंस्ट द बाइबल, इट्स रेबेलियन। अगर वो अपने दोस्त को छोड़ देता है और उसे मुसीबत में रहने देता है, वो अपना अहद ब्रेक करता है एंड ही बिकम्स अ फॉल्स फ्रेंड। और यहां पे यूनतन ने अपने किरदार और जिंदगी का बेहतरीन नमूना जो है वो हमारे सामने है। और उस पर क्या डिसीजन था, इस सारी सिचुएशन में यूनतन का डिसीजन क्या था, बाप का साथ दूंगा या दाऊद का साथ। हम भी ऐसे फैसलों में से गुजरते हैं, कई दफा शौहर को अपनी जिंदगी में यह फैसला करना पड़ता है कि मैं अपनी बीवी का साथ दूंगा या अपनी मां का साथ। टफ लाइफ कम्स इन लाइफ, बट लेट मी टेल यू, फॉर अ गॉडली पर्सन डिसीजन करने में, कोई भी डिसीजन करने में कोई प्रॉब्लम, अ गॉडली मैन हैज नो प्रॉब्लम इन मेकिंग एनी डिसीजन, because a godly man makes godly decisions. अहमक लोग अहमकाना फैसले करते हैं और righteous लोग, खुदा परस्त लोग, खुदा परस्त फैसले करते हैं। तो यूनतन का फैसला क्या है, I will stay with you, I will not leave my father and I will not leave my family. मैं तो लोगों के साथ डिसीजन करना है सॉल्व करें या मेरा दोस्त करें उनकी मर्जी, बट आई विल रिमेन यू, मैं अपने बाप के साथ भी वफादार हूं, मैं गद्दारी नहीं करूंगा, और जहां मुझे अपने बाप के साथ खड़े होना है मैं वहां पे खड़ा हूंगा, और जहां नहीं मैंने अपने बाप को किसी गलत फैसले से रोकना है या बचाना है मैं वो कोशिश करूंगा, और जहां मुझे दाऊद का साथ देना है मैं दाऊद का साथ दूंगा। जो मेरा बेटे होने का हक है मैं वो हक भी अदा करूंगा, और जो मेरा दोस्त होने का हक है मैं वो भी अदा करूंगा, मैं मैनिपुलेट नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, बट आई विल स्टैंड न्यूट्रल एंड आई विल स्टे न्यूट्रल, और मैं ये कोशिश करूंगा दोनों के दरमियान ब्रिज बनूं और इनकी सुलह हो जाए। और दाऊद ने कहा कि मेरा बाप मुझे मारना चाहता है, साउल ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरा बाप करना चाहे और मुझ पर रुबीन लग जाए। तो लेट्स हैव अ टेस्ट, तो दोनों के दरमियान क्या क्या फैसला हुआ था, लेट्स हैव अ टेस्ट, और उस टेस्ट में ये साबित हुआ कि साउल जो है वो दाऊद को मारने लगा। और यूनानी ने उससे कहा, इफ माय फादर इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग विद यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू। अगर मेरा बाप किसी जगह पे गलती करेगा या करना चाहता है या मारना चाहता है, मैं अपने फर्जंद होने का भी हक अदा करूंगा और मैं अपने दोस्त होने का भी हक अदा करूंगा। तो दिस इज द क्वालिटी इन द लाइफ ऑफ जोनाथन। इज हम मैं चाहिए आत्मों की सदियों में भी होनी चाहिए और हम सब की सदियों में भी। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद साउल? साउल की प्रॉब्लम क्या है? हम पहले भी कहीं ना कहीं इस बात को डील करते हैं और साउल की जो प्रॉब्लम है, उसकी जो ट्रेजेडी है वो क्या है? प्राइड। और इस प्राइड की वजह से एनमी और जेलसी उसकी जिंदगी। लेकिन मेन उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्राइड। और बाइबल में उसके बारे में लिखता है, साउल वॉज द चॉइसेस्ट मैन इन इज़राइल, चॉइसेस्ट मैन इन द इज़राइल। जब हम इंग्लिश में देखते हैं उसको, अफगानी में जब आज इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब है साउल वॉज द मोस्ट एक्सलेंट मैन इन द इज़राइलिट्स या अमंग द इज़राइलिट्स। ही वॉज द चॉइसेस्ट मैन, बाइबल उसके बारे में। ही वॉज द ग्रेट लीडर, ही वॉज द ग्रेट वॉरियर, ही वॉज द ग्रेट मैन। उसका गर्व बनी स्टाइल में सबसे ज्यादा थी, पर सामने सेवन की आए और इन सारी चीजों ने फ्रॉम अ रिच फैमिली। उसे गधों में कारोबार नहीं करते थे, ये वो इस फादर वाज अ ग्रेट बिजनेसमैन। ही केम फ्रॉम अ सिक्योर फैमिली, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज नहीं थी, कॉम्प्लेक्स नहीं था, और ये चीजें जोनाथन में नहीं थी, उसको अपने बाप और दादा से मिली थी। दे केम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, हिज फैमिली वाज वेल्दी एंड दे वर ग्रेट बिजनेसमैन। हैविंग अ लिटिल मनी थिंग्स, और यही प्राइड उसके अंदर बिल्डअप होता चला। एंड द पॉइंट इज, जब हमारे कैरेक्टर में प्राइड आ जाता है, व्हेन प्राइड बिगिंस टू अपीयर इन आवर कैरेक्टर, ट्रबल बिगिंस, मुसीबतें शुरू होती हैं। बाइबल में क्या लिखा है? सवाल से पहले गुलामों के दैन हाथ के नीचे रहे वो मुझे वक्त पर सब। When pride begins, trouble begins. Keep this thing in your heart. दूसरों में ना देखें उनमें कितना प्राइड है। Let them ruin their own lives. उनको अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दें। बाइबल में क्या लिखा है? जब हम गलत लोगों को, नाराज को नसीहत करते हैं वो हमारी खिलाफ होते हैं। जब हम राष्ट्रवाद को नसीहत करते हैं वो तरबियत पजीर होता है, वो सीखता है, वो अपनी राह दुरुस्त करता है आगों पर। When we are too independent, this is pride. When we don't share, when we don't counsel with others where we need the counsel, this is pride. जब हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा और अफजल समझते हैं, this is pride. तो पॉइंट याद रखें, छोटी सी बात है, मेरे ये स्टेटमेंट याद रखें, when pride begins, trouble begins. And what happens? When people have pride, they can't have any friends. वो अपनी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं बना सकते। Some people will never have friends in their life. And what's the trouble? What's the problem? Pride. आज चर्च में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बहन भाई और चाचे बापे के अलावा और किसी मदद के लिए नहीं। Why? Because pride kills relationships. फखर रिश्तों को मारता। If something is killing your relationships, that's not money, that's the pride. वो आप में भी हो सकता है, वो अगले बंदे किसी में भी हो सकता है। But the point is, pride kills relationships. ये जो प्रॉब्लम है साउथ की, he can't have relationship with David. भाई यूनिटर अगर उसके साथ एक रिश्ता रख सकता है तो साउल क्यों नहीं रख सकता? साउल के बारे में भी निकाल को दाऊद से मोहब्बत कर देते और यूनिटर के बारे में भी निकाल को दाऊद से मोहब्बत कर देते, लेकिन साउल अपना रिश्ता बरकरार नहीं रख सकता बिकॉज प्राइड किल्स रिलेशनशिप। और जितनी जल्दी हम इसमें से निकलेंगे हम अपने रिश्ते रिश्तों को सस्टेन कर सकते। नंबर दो, इफ वी लिव इन प्राइड एंड इफ वी मूव इन प्राइड वी कांट हैव सपोर्टर्स एंड कंफर्टर्स एंड हेल्पर्स बिकॉज वी ट्राई टू कंट्रोल अदर्स। प्राइड कंट्रोल्स अदर्स, प्राइड मैनिपुलेट्स। जब अगर हमारी दुनिया में हर हर चीज कंट्रोल करते हैं और हर बंदे को ये चाहते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक चले, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करें बिकॉज प्राइड कंट्रोल्स। और आखिरी बार बहुत सी बातें की जा सकती है पंद्रह के तालुक से, बट द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज प्राइड किल्स और फिर मार डालता है आपकी खुशियों को, मार डालता है आपके हालात को, मार डालता है आपकी तरक्की को, मार डालता है आपके रिश्तों को, मार डालता है। And the same thing happened with Saul. Pride killed. दुश्मन ने साउल को नहीं मारा, जंग ने साउल को नहीं मारा, उसके बदल ने उसको। उसे दाऊद से क्या प्रॉब्लम थी? He will take my place. अगर वो दाऊद के साथ प्रॉपरली चलता रहता और एक गवर्नेंट में और एक लव रिलेशनशिप में मूव करते तो मैं भी साउल अपनी उम्र पूरी करता, साउल अपनी हुकूमत को पूरा करता। माल को फिर भी खुदा ने उसे दिया और जगह फिर भी दाऊद ने उसके ले ली, तो बदल करने से वो फर्क पड़ा? फर्क यही पड़ा कि कुछ साल वो और जिंदा रह सकता था, वो नहीं रहा। प्राइड किल्स। इससे छोटी और गहरी और कॉम्पैक्ट डेफिनेशन जो है वो प्राइड की नहीं हो सकती। इट किल्स योर बिजनेस, इट किल्स योर फ्यूचर, इट किल्स योर जॉय, इट किल्स योर रिलेशनशिप, इट किल्स योर हेल्थ, इट किल्स एवरीथिंग व्हिच गॉड हैज गिवन। सब कुछ मार। साउल और यूनाथन ने डिफरेंस किया और यही फर्क आज चर्च में मौजूद है। दो किस्म के लोग हैं, द साउल पीपल एंड द जोनाथन पीपल। साउल की अप्रोच क्या है कि जो शख्स मेरी मदद करेगा और मेरी जान बचाएगा आई विल लव दैट पर्सन, ही लव द पर्सन हु कैन हेल्प। इसलिए उसकी मोहब्बत जो है वो जेन्युइन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए उसे मोहब्बत कर रहा है कि दाऊद उसकी मदद कर मधुबे निकालने में, सस्टेन करने में, मैडनेस पे कदम आने में या अदरवाइज किसी और तरह से उसकी मदद कर रहा है, उससे मोहब्बत कर। सम पीपल विल जस्ट लव यू बिकॉज यू आर हेल्पिंग। आप उनकी हेल्प को बंद कर दें तो फिर आप उनका असली जो चेहरा है वो देख सकते। सम पीपल जस्ट ऑनर यू एंड जस्ट लव यू बिकॉज यू आर हेल्पिंग। किसी न किसी वे में, चाहे स्पिरिचुअल है या फिजिकल है या कोई और एरिया है, वो सिर्फ आप इसलिए प्यार करते हैं आप उनकी मदद करें या योर काइंड। दिस इज वन काइंड ऑफ लव, जिस्मानी मोहब्बत, जमीनी मोहब्बत, सेंसुअल लव, फ्लेशली मोहब्बत, कि जिनसे हमें फायदा पहुंचना है हम उनसे प्यार करें। उनका भाई समझते हैं, हम उनके लिए खाने भी बनाएंगे, फंक्शन भी करेंगे, ये भी करेंगे। वी जस्ट लव देम बिकॉज दे आर हैप्पी। लेकिन जोनाथन इज रिवर्स, और मैंने पहले भी ये कहा कि ही इज अ गॉड मैन, हिज लव इज गॉड। और यूनाथन की मोहब्बत क्या है? ही इज लविंग डेविड दाऊद से इसलिए मोहब्बत कर रहा है कि वो उसकी मदद करे, कि کہ وہ مسیح میں پالے ہیں. Now you can see the difference. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ زندگی کے بہت سے فنامنا سمجھ جائیں. اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو صرف آپ سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ آپ ترقی کریں, کامیاب ہوں, آپ کی مدد کی جائے, وہ آگے بڑھیں اور آپ مسیح کے کام کو حاصل کریں, then you have a real friend, then you have a godly friend. اور ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں, آپ سے انہیں کچھ نہیں لینا, وہ آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتے. چارٹر نیڈ نو فیور فرام دیم. اس کے پاس وہ پہلے سب کچھ تب اس کے پاس تھا, دولت اس کے پاس تھی, اور یہ تو پہلے تھا مین آف ریپوٹیشن, اور خدا اس کی زندگی میں موجود تھا. ڈیوڈ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو وہ یونتن کو دے سکتا, لیکن یونتن کے پاس ایسی چیزیں تھیں جو وہ داؤد کو دینا چاہتا تھا. دیٹ از وائی جوناتھن میڈ ڈیوڈ ہز فرینڈ. اور اس کے پاس کیا چیزیں تھیں جو وہ داؤد کو دینا چاہتا تھا؟ ہز گاڈلی وژن. اپروچ اس کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے کاموں کو سمجھ سکے, خدا کی منہ کو سمجھ سکے. اور ادر پیپل ود باڈی لو انلیس ہم پہلے یہ جان سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ ہم کون, ہو آر یو, میں کون, آپ کون ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے. جب تک یہ ہمارے اندر مکاشفہ نہیں ہے تو جوناتھن نیو ہو ہی واز, وہ یہ جانتا تھا کہ میں کون, اور اس لیے وہ داؤد سے انکنڈیشنل انمیرٹڈ فرینڈشپ. جوناتھن کا میرٹ اور تھا, ڈیوڈ کا میرٹ اور تھا, اسے کچھ نہیں ماننے کا, دونوں کا لیول اور, وہ بادشاہ کا بیٹا تھا, وہ چلوہا تھا. It was unconditional friendship. وہ اسے کچھ مانگ نہیں رہا تھا کہ مجھے یہ دے, بلکہ اس کو دے رہا تھا. I give you my dress, can I give you my royal, can I give you everything so that I can help you, تاکہ میں تیری مدد کر سکوں کہ تو وہ بن سکے جس کے بارے میں یہ کہا گیا میرے بھائی کے موقع پر. So that I can turn David into such a man which is after God's own heart. جو خدا کے دل کے, ہمیں اپنی زندگی میں ایسے گاڈلی رائٹس سینئر لوگوں کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی ایسی بنا سکیں جو خدا کے دل کے ہوں. Hallelujah. We all need a Jonathan in our lives. اور وی آل نیڈ جوناتھن ایکسپیرینس. یہ تجربہ ہماری زندگی میں, یہ کنٹینیویشن ہماری زندگی میں. سب کون ہے مسیح میں, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ دا مور یو نو اٹ اینڈ دا مور یو لیو اٹ, دا مور افیکٹڈ یو ول بی ان گاڈ. تو چند ہی باتیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے بھی آپ جانتے ہیں, نہیں باتیں نہیں, کیا مسیح میں کیا ہے, آج کیا ہے بھائی مسیح کا, یو آل نو اٹ. سو میں پیٹر نے جیسے بات میں لکھا ہے اور جگہوں پر بھی لکھا ہے, رومنز میں بھی ہے, ہندوز میں بھی ہے. تو جسٹ میک اٹ شارٹ تاکہ آپ ایک لسٹ بنا سکیں. نمبر ون, وی آر چوزن بائی گاڈ بیفور دی کریشن آف دی ورلڈ, بنائے عالم سے پہلے خدا نے چن لیا, اس سے پہلے خدا درخت سورج چاند ستارے بناتا اب خدا نے چن لیا. ہاں آج کے بارے میں یاد آیا, آج اوپر ایک ہپس ہے اور بلڈ مون ہے, اور آج وہ فینومنا ہے جو سم ویئر 1980s میں ہوا, 83 میں, 84 میں, اور آج ہوگا, اور پھر 2031 میں ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ سورج اور چاند کے के दरमियान जो है वो जमीन आ जाएगी और वो लूनर एक्लिप्स होगा और आज के दिन चांद जमीन के कितना भी नजदीक आ सकता है वो आएगा और अपने साइज से 33% बड़ा हमें नजर आएगा क्योंकि वो जमीन के बिल्कुल करीब आएगा जितना करीब ग्रेविटी उसे अलाउ करेगी अपने ऑर्बिट में और आज उसकी जो रोशनी है वो 14% ज्यादा ये बड़ा यूनिक फिनोमेना है जो आज होगा और फिर 2033 में जाके ये फिनोमेना जो है रिपीट होगा और इससे पहले 1984 में साथ है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द ईयर ये फिनोमेना हुआ था दिस शोस समथिंग यूनिक इज गोइंग टू हैपन रिगार्डिंग द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इसका मतलब है आज भी हो सकती है होने को कल भी हो सकती है और मे बी 2033 जो है एक बड़ा वार्निंग के लिए और ये ना सोचे बड़े साल पड़े हैं 33 में कितने साल पड़े हैं 18 साल 19 साल लेकिन इससे पहले भी सारे चुनाव थे सो नंबर वन पी आर 2022 आपका इंतखाब खुदा ने किया खुदा आपको चुन के अपनी बादशाह में लाए इसकी अपने डेट के लिए जाते हैं वरना बिना और तो रखते हैं नंबर दो वी आर हिज इलेक्ट हम उसके फल से वी आर द इलेक्ट नंबर थ्री हम खुदा के ले वाले बेटे और ये कहा जाता है ये कहा भी गया है लेकिन मैं इसमें थोड़ी करेक्शन करना चाहता हूँ अक्सर जो जुबान में टर्मिनोलॉजी आई जरूरी है वी आर दी अडल्ट अडॉप्टेड सन्स इन द हाउस ऑफ हाउस होल्ड ऑफ गॉड अब मैंने खुदा के ले वाले बेटे और बेटियां नहीं है बल्कि वाले ले वाले बेटे और बेटियां इसका मतलब है हम मेराश लेने के काबिल और इसकी डिटेल में मैं आप नहीं जाता फिर हम थ्योलॉजी में चले जाए नंबर फोर वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वी आर डिफरेंट हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नॉट बाय मैरिट बट बाय ग्रेस अपने किसी मैरिट की वजह से नहीं बल्कि खुदा के फजल की बात जिसमें मैं जोर देना ये सारी बातें हमने पहले भी सुनी है और जो मैं आखिरी बात बता रहा हूँ वो भी हमने पहले सुनी है लेकिन हमने इस तनाजुर में आकर उस पर गौर करना है वी आर द डवेलिंग प्लेस ऑफ गॉड खुदा आपने सुकूनत खुदा आपने सुकूनत खुदा आपने सुकूनत यू आर द सेंचुरी ऑफ गॉड क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस और खुदा से क्या मतलब है बाप बेटा और खुदा का रूप में बस यू आर द सेंचुरी ऑफ गॉड यू आर द डवेलिंग प्लेस ऑफ गॉड खुदा आपके अंदर रहता है ये आपकी असल पहचान दिस इज योर आइडेंटिटी दिस इज व्हाट बाइबल हैज मेड यू मसीह की निजात ने आपको ये बताया है खुदा आपके अंदर है हु इज लिविंग इनसाइड गॉड सब कहें मैं खुदा का मस्कर खुदा मुझ में है मैं खुदा का मस्कर खुदा मुझ में है मैं खुदा का मस्कर खुदा मुझ में है सुवेर इज गॉड God is not in the buildings. God is not just scattered somewhere in the universe. And God is not just on his throne in heaven. God lives inside. Khuda aapke andar hai. If you are a believer, if you are saved, if you are a Christian, God lives inside. You get it? अगर आपको ये चीज मिल गई आपको बहुत खुदा आपके अंदर है योर गॉड लिव्स इनसाइड और ये मदद करता है, हम उसमें कामयाब जिंदगियां बसर करें, हम उसमें फतामंद जिंदगियां बसर करें, हम उसमें गलबे की जिंदगियां बसर करें, हम अपनी बीमारियों पर गालिब पाए, हम अपनी कमजोरियों पर गालिब पाए, हम अपने हालात पर गालिब पाए, हम जादूगरों पर गालिब पाए, हम कष्ट पर गालिब पाए, हम स्ट्रेंथ पर गालिब पाए, हम मैजिक पर गालिब पाए। बड़े से आकर खुदा ने आपकी मदद नहीं करनी है, मेरी मदद नहीं करनी है, वो जिस पर आप ईमान रखते हैं वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। इफ यू आर अ क्रिश्चियन ही विल नेवर लीव। मैं कभी तुमसे दस बता, ही विल नेवर फॉरसेक यू, ही विल नेवर लीव यू, ही इज इंस्टेंट। आपका निजात देने वाला, आपका शिफा देने वाला, आपका रहाई देने वाला, आपका बंधन तोड़ने वाला आपके अंदर है, आपको कामयाब बनाने वाला आपके अंदर रहता है, आपको सियाह के फंदे से रहाई देने वाला आपके अंदर रहता है, आपकी दुआएं सुनने वाला और दुआओं का जवाब देने वाला आपके अंदर रहता है। मैं कभी तुमसे दस बता, एक माँ अपने दूध पिलाने बच्चे को, लेकिन मैं कभी तुम्हें मरामोश नहीं करूंगा और कभी तुमसे दस बता, योर गॉड लिव्स इन साइड, ही ऑलवेज स्ट्रेंथन्स यू, ही ऑलवेज हेल्प्स यू। जब तक आप यीशु पर ईमान रखते हैं, निजात में है, खुदा के वाले बेटे और बेटियां हैं, इज इन साइड। उसने आपको छोड़ा नहीं, वो आप पे सजाएं नहीं भेजता है, वो आप पे आपदे नहीं भेजता है, वो आप पे मुसीबतें नहीं भेजता है, वो आपको रुकाई नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला है, वो जो आपके अंदर है, जो तुम में है, वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, और तुम में कौन है, तुम में उसका रूह। जस्ट गेट दिस रिवीलेशन, ये मुकाशवा आपकी नॉलेज का हिस्सा ना बने, आपके ईमान का हिस्सा बन जाए, मेरा खुदा मुझ में रहे। तो आज ऐसे गीत लेके जाए जो हम गा सके, ताकि हमारे बच्चे भी इन बातों को याद कर ले, आई एम द डवेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, आई एम द हाउस ऑफ गॉड, आई एम द बिल्डिंग ऑफ गॉड। खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में, यू आर द टैबरनेकल ऑफ गॉड, you are the temple of God and you are the dwelling place। agar duniya mein khuda ke hi maujood hai aur wo dekha ja sakta hai to wo aap kisi pod mein nahi rehta, kisi pahad mein nahi rehta, darya ke andar mein nahi rehta hai, un holy places mein nahi rehta jinko hum jannat mein dekhne ke liye jaate hain। agar ye na in a larger way khuda ki huzuri har jagah par maujood hai, lekin जोर दे रहा कि अगर हम इस बात को समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी की फिलॉसफी बदल जाएगी। आखिरी बार और मेरा ज्यादा मैसेज कंप्लीट हो जाएगा, पर विल जस्ट टेक वन पॉइंट एंड देन वी विल बी देयर। और द पॉइंट इज कि व्हाई, जो हमने पहले भी सवाल किया, व्हाई गॉड ब्रॉट जोनाथन इन द लाइफ ऑफ मी, क्या वजह थी, खुदा के फैसले उम्मीद है, यूनिक है, और वो बेफायदा नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। एंड वन ऑफ द रीजन इज, जब गॉडली लोग, खुदावर्ष और राष्ट्रवर्ष लोग हमारी जिंदगियों में आते हैं और खुदा हमारी जिंदगियों में रहता है, तो उनको लाने के की वजह से खुदा हमारी मदद करता है कि हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारे जो फैसले हैं, हमारे जो सोचे हैं, हमारे जो ओपिनियन है, वो गॉडली हो। क्या करें, गॉड इज सफिशिएंट। द गॉडली मैन अफेक्ट्स द ओबीडियंस एज अ लाइफ ऑफ अदर पीपल। और कई लोग आपके बारे में कहेंगे यार ये बात हमारे से नहीं होती, वो कौन ही पसंद करते हैं। कई दफा अगर आप सेक्युलर वर्ल्ड में देखते हैं तो लोग अपना काम करवाने के लिए उसको मेन इसको मेन और किसी के बारे में आपके बारे में ये कहेंगे यार उस बंदे ना जाता है आप उसे पढ़े का उसने वो ही करना है जो उसको करना है। वो आपकी कादर जो है वो आउट ऑफ द वे नहीं करें, गलत फैसला नहीं करें। सो ज्यादातर आपकी खुदाशक्ति की वजह से साउल के फैसलों पर भी असर था कि वो काम ना करे जो वो करना चाहता है, दाऊद को नाम आ रहे जो वो मानना चाहता है। अपनी खुदापरस्त जिंदगी से वो उनकी जिंदगियों में इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड डेविड को जॉनाथन इन्फ्लुएंस कर रहा था कि एक जबरदस्त मर्द खुदा में वो तभी होता था। The godly man imparts his godly influence upon others. Even आपके घर में, even आप लोगों के बारे में पढ़ें, he was not just giving the message to the people, बल्कि उसकी जो खुदा पर जिंदगी थी, वो लोगों पे असर था। उन्होंने कितना कबूल किया ये काम किया क्योंकि आपने चाहा था। But when in a family you live a godly life, आप अपनी सारी फैमिली को इनविजिबली इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं यू मस्ट लिव अ गॉडली लाइफ। और वो अपनी जिंदगी के बहुत से फैसलों में आपके असर की वजह से वो गॉडली फैसले इनडायरेक्टली आप उनको बॉस करेंगे कि वो खुदा द सेम वे लीडरशिप चर्च में व्हेन द लीडर्स आर लिविंग गॉडली it will help the junior leaders and the laity and the congregation and the elders to live godly lives. Hum apna khuda parasti ka jo asar hai wo usko milega. Aur isliye kuch arse ke liye khuda ne Jonathan ko Daud ke nazdeek aane diya taaki wo uske godly lifestyle ko approach ko और लिविंग को हालेलुया। खुदा खुदा सबको बरकत दे। और नेक्स्ट टाइम अभी आगा मैसेज हुआ नेक्स्ट टाइम खुदा अपने चला अभी इसे करें आमीन।
यकीनन इस पुर असर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।